लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कांस्टेंट लेवल्स की जीवनी एवं मिशन पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओं, इन दिनों हम छोटा नागपुर के प्रेरित फादर लेवंस की जीवनी एवं मिशन पर प्रकाश डाल रहे हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम से छोटा नागपुर में ख्रिस्त की ज्योति जलाई और पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया, समाज में न्याय, समानता और मानव प्रतिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा दिया। आज भी हमारे समाज में इन चीजों की अति आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम में हम छोटा नागपुर में आदिवासी लोगों की दयनीय स्थिति और फादर लेवंस के अथक प्रयास पर प्रकाश डालेंगे। उन दिनों जमींदारों का बहुत अधिक बोलबाला था, वे आदिवासियों के साथ बड़ी क्रूरता का बर्ताव करते थे, किंतु फादर लेवंस ने बड़े साहस के साथ उन्हें जमींदारों के चंगुल से निकाला। फल यह हुआ कि लोग स्वेच्छा से ख्रिस्त धर्म अपनाने लगे। एक बार की घटना है, फादर लेवंस किसी गांव के दौरे पर थे। उन्हें देखकर लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। जमींदार के नौकर को पता नहीं था कि फादर लेवंस भी भीड़ में उपस्थित हैं। वह लोगों के सामने अपने मालिक के अध्यादेश को पढ़कर सुनाने लगा। अध्यादेश में जमींदार ने लोगों से अपने बेटे की शादी के लिए 72 रुपये चंदा जमा करने का फरमान जारी किया था। अध्यादेश में यह भी कहा गया था कि जो लोग चंदा जमा करने से इनकार करेंगे उन्हें छड़ी से पीटा जाएगा। अध्यादेश निश्चय ही अवैध था और उस समय 72 रुपये एक बड़ी रकम होती थी। फादर लेवंस ने नौकर के हाथ से अध्यादेश पत्र छीन लिया। नौकर ने उसे वापस मांगने की खूब कोशिश की, परंतु फादर लेवंस ने उसे वापस नहीं दिया और एक बहुमूल्य वस्तु की तरह उसे अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि यह उनके लिए एक बड़ा प्रमाण था। अब दूर दूर से लोग फादर के पास आने लगे और ख्रिस्त धर्म में प्रवेश पाने तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अर्जी करने लगे। यदि फादर लेवंस अनुपस्थित होते तो ख्रिस्त धर्म में प्रवेश पाने के उम्मीदवार वहीं तंबू लगाकर धीरज से उनका इंतजार करते थे। गांव में चर्चा का विषय भी यही था कि किस तरह लोग एक एक करके ख्रिस्त बन रहे थे और कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता था। सन 1888 के जनवरी में मिशन सुपीरियर के दौरे पर आने से पहले ही फादर लेवंस ने महाधर्मदर्श पॉल गोथल्स को जानकारी दे दी थी कि बस्या के बाहर से भी लोग मिशन में प्रवेश करने की अनुमति मांग रहे थे। उधर बीरू और गंगपुर के गांव भी आना चाहते थे। फादर लेवंस पर मिशन सुपीरियर फादर ग्रोसिन की पूरी उम्मीद थी, अतः वे उन्हें पूरा मौका देना चाहते थे, जबकि महाधर्मदर्श पॉल गोथल्स सुपीरियर के समान फादर लेवंस को पूरा बागडोर देना नहीं चाहते थे। महाधर्मदर्श चाहते थे कि फादर लेवंस को उनकी गतिविधियों के साथ जांच की जाए तथा कोयल नदी तक मिशन के विस्तार को रोका जाए, जिसको मिशन सुपीरियर ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने महाधर्मदर्श को जवाब देते हुए कहा, ये गांव स्वेच्छा से हमारे पास आते हैं, तब क्या हमें उन्हें बिना कारण मना कर देना चाहिए? क्या हमारी ओर से यह कहना अच्छा नहीं होगा कि जो ही हमारे पास पुरोहित होंगे हम आपकी मदद करेंगे? वास्तव में फादर लेवंस के अत्यधिक मिशनरी उत्साह का मुख्य कारण था आत्माओं की मुक्ति। लोगों की मदद करने के लिए उन्हें अधिक मिशनरियों और पैसों की जरूरत थी, किंतु कई बार उन्हें नकारात्मक जवाब मिलते थे जिसके कारण वे असहाय हो जाते थे। वे अक्सर कहा करते थे, उन लोगों की एक ही आत्मा है, क्या हम उन्हें कह दें कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो रुपये हैं और ना ही व्यक्ति। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शैतान की शक्ति के लिए इन बेचारे लोगों की मदद करना छोड़ देगा, जबकि वे ख्रिस्त के शिष्य बनना चाहते, पुरोहितों को घेर लेते और उनके पास आने का जिद करते हैं। कौन उन्हें उनकी मनहूस स्थिति में छोड़ देगा? मैं ऐसी स्थिति में फादरों से यह बिल्कुल नहीं कह सकता, यहीं तक, आगे नहीं। यह मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं उनसे कह सकता हूँ कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें, धूप और वर्षा में विवेक से काम लें, किंतु उनसे यह कतई नहीं कह सकता कि नदी के उस पार ना जाएं, क्योंकि 8 दिनों में जिला भर से 2000 लोगों के ख्रिस्त धर्म में आने का खतरा है। जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। मिशन में सहायता देने आए नए मिशनरियों को फादर लीबन सबसे पहले ना तो प्रशिक्षण देते और ना ही भाषा सिखाते थे, बल्कि उन्हें मिशनरी गतिविधि सिखलाते थे। वे उन्हें बतलाते थे कि एक मिशनरी को लोगों की नजर में होना चाहिए, उनके बीच होना चाहिए। वे उन्हें कुछ घंटों के लिए गांव भेजते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें। वे कहा करते थे, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, उनकी उपस्थिति ही ख्रिस्तियों और ख्रिस्ते बनने के उम्मीदवारों को उत्साह प्रदान करेगा। इसी विचार से एक दिन उन्होंने ब्रदर कोरेमांस को बाहर भेजा, जो तोरपा में गिरजाघर का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने उन्हें घोड़े पर सवार होकर एक जिला का दौरा करने को कहा, जिसका दौरा लंबे समय से नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, इस तरह ख्रिस्त सोचेंगे कि हम उनकी चिंता करते हैं और उन्हें छोड़ नहीं देते हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेवंस की जीवनी पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और अब लीजिए प्रस्तुत है आज का भक्ति गीत।
ईश्वर के मंदिर में जाए, आओ हम ईश्वर के मंदिर में जाए। सुनकर हर्ष हुआ, हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलम पहुँचे अब हम, और हम सब तेरे द्वारे पर आए, तेरे द्वारे पर आए। आओ हम ईश्वर के मंदिर में जाए। यरूशलम का नव निर्माण हो गया, हो गया, हो गया है, उसके सभी वासी एकता से बंधे हुए, प्रभु की प्रजा यहाँ रहती है, प्रेम की धार में बहती है। आओ हम ईश्वर के मंदिर में जाए।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक विश्वास पात्र। लेखक हैं माइकल होजस। श्रोताओं, बड़ों का आदर सम्मान करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना, जरूरतमंदों की मदद करना, गरीबों को दान देना वगैरह परिवार में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है। हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो हमें एक तरह का संतोष प्राप्त होता है। पर क्या आपको कभी ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ा है जो आपको जरूरतमंद बताकर आपके पैसे झांस कर चलता बना हो? जी हाँ, आज चोर उचक्कों और ठगों की कमी नहीं है। वे लोगों को झांसने के नए नए तरीके ढूंढ निकालते हैं। अपनी मीठी मीठी बातों से वे आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। भावनावश कभी आप उन पर विश्वास कर उनकी मदद कर देते हैं। अगर मदद की रकम बड़ी हो तो जरूर उस व्यक्ति के बारे में सही तरह से जांच परख कर ही मदद करें। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। कहीं मदद करने के चक्कर में किसी बड़े लफड़े में आप फंस न जाएं। और जरूरतमंदों के लिए अपने दिल का दरवाजा सदा के लिए बंद न कर दें। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका विश्वास पात्र।
बेटा, जिस काम में जितना समय लगना है वो तो लगेगा ही ना, फिर उसके लिए जल्दबाजी क्यों मचाना?
कुछ काम ऐसे भी होते हैं मम्मी जिनमें टाइम तो लगता है, लेकिन उस काम को अधिक समय देकर या जल्दी जल्दी करके निपटाया जा सकता है।
अरे, ऐसी जल्दबाजी भी किस काम की?
साधना भी आपकी ही तरह है मम्मी, उसे भी अपना काम अपने ही टाइम से करना अच्छा लगता है। जरा कुछ जल्दी करने को कहो तो आप ही की तरह लेक्चर देने लगती है।
इसमें लेक्चर देने की क्या बात है, जो सही बात है वो तो कहनी ही पड़ती है ना। तू ही कौन सा अपने काम समय पर कर लेती है?
अगर मैं भी आपकी तरह होती ना तो अभी आपको मैथी साफ करने के लिए आवाज नहीं लगाती।
मगर तुझे ऐसे कौन से ढेरों काम करने पड़ते हैं?
देखो, अभी मुझे सब्जी साफ करनी है, नहाना है, फिर कपड़े प्रेस करना है और फिर कपड़े निकालना है पुराने देने के लिए।
पुराने कपड़े किसको देने के लिए?
कॉलेज का हमारा फ्रेंड्स ग्रुप बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पुराने कपड़े जमा कर रहा है।
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तुम लोग जो पैसा और पुराने कपड़े इकट्ठे कर रहे हो वो पूरा की पूरा बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचेगा भी या बीच में ही कहीं गायब हो जाएगा?
मम्मी, अगर बीच में गायब होने के डर से सब लोग आपकी तरह सोचने लगे ना तो बेचारे बाढ़ पीड़ितों का क्या होगा, उन्हें मदद कैसे मिलेगी? यही सोचकर तो फिर कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा।
मगर बेटी, तुम लोग जिस अच्छी भावना से ये अच्छा काम कर रहे हो वो सब उन तक भी तो पहुंचना चाहिए ना। आखिर उन्हीं के लिए तो लोग मदद देते हैं, मगर ये बीच वाले उन्हें आधा तो गायब ही कर देते हैं।
अब ये बीच वाले अपनी जाने मम्मी, भगवान तो ऊपर से सब कुछ देखता है ना। मेरा बस चले तो मैं लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ कर दूं।
सही है बेटा, अगर तेरे जैसी मददगार लड़की को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो शायद तू बहुत सी रोती हुई आंखों के आंसू पोंछते।
आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी, हम में से हर एक को जरूरतमंदों की मदद जरूर करना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो, अगर हम उस लायक हैं तो।
मगर आजकल का जमाना देखा है तूने, किस तरह लोग कैसे किसी की सहानुभूति और दया का नाजायज फायदा उठाकर लोगों को लूटते रहते हैं।
वो अपना काम करते हैं तो हमें भी अपना काम करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मम्मी कि इस चक्कर में सचमुच कोई मदद चाहने वाला मदद से वंचित रह जाए।
तू तो ऐसा कर, एक आश्रम खोल ले और अरे देख तो जरा कौन है दरवाजे पे।
खुद मत जाना, मुझे ही सब काम बताना, जाती हूँ।
ये लड़की भी ना, जरा सा कोई काम बताओ और तुनकने लगती है बस।
मम्मी जरा यहाँ आना।
अब ये मुझे भी बुलाएगी, देखूं कौन है क्या है। कौन है
ये? भैया की बात सुनो, ये कुछ कह रहे हैं।
क्या बात है भैया, कौन है आप?
नमस्ते जी, मेरा नाम है योगेश कुमार चौहान। मेरी माँ ये आपके सामने वाले नर्सिंग होम में भर्ती है, उनको हार्ट अटैक आया है तो डॉक्टर ने कुछ महंगी दवाइयाँ लिख दी है और मेरे।
तो हम क्या करें भैया, हम तो कुछ नहीं कर सकते।
आप मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास दवाई के पैसे हैं लेकिन दवाई इतनी महंगी है कि उसमें 500 रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर आप 500 रुपए दे दें तो शाम तक मैं अपने घर से लाकर आपको दे दूंगा, तब तक के लिए आप मेरी ये साइकिल रख लीजिए।
मगर हम तो आपको जानते नहीं भैया, हम आपकी साइकिल रखकर आपको कैसे पैसे दे सकते हैं?
आप मेरा पता लिख लीजिए, मैं छोटा बाजार मकान नंबर 42 में रहता हूँ, योगेश कुमार चौहान नाम है मेरा। माँ सीरियस है, और मेरा घर यहाँ से दूर है, वरना आपसे मदद नहीं मांगता।
मगर भैया
दीदी
वो
मेरा घर दूर है, अगर घर जाकर पैसे लेकर आने में देर हो गई और माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेहरबानी कर दीजिए, शाम को माँ की हालत संभलते ही मैं आपको पैसे लौटाकर अपनी साइकिल ले जाऊंगा।
ठीक है भैया, आप बहुत जरूरतमंद लगते हैं। क्या बताया था तुमने तुम्हारा पता? छोटा बाजार मकान नंबर 42।
जी जी दीदी।
मगर देखो मम्मी, बेचारा बहुत जरूरतमंद है, माँ सीरियस है, फिर ये अपने यहाँ अपनी साइकिल रख रहा है। इसकी मदद कर दो मम्मी, बदले में इसकी साइकिल तो रहेगी ना हमारे पास।
मगर बेटी तेरे पापा बहुत गुस्सा होंगे और फिर मेरा
दिल। मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगी।
प्लीज।
ठीक है, अपने पापा से तू ही बात करना। फिर आप काम क्या करते हो भैया?
चाय की घूमटी चलाता हूँ दीदी।
घर में कौन कौन है?
माँ के अलावा बीवी और दो बच्चे हैं और एक छोटा भाई है।
ये लो भैया, और शाम तक जरूर ले आना और अपनी ये साइकिल ले जाना।
जी मैडम, साइकिल बिना मेरा भी काम रुक जाता है, मैंने साइकिल रख दी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद दीदी। चलो, डॉक्टर ने दवाइयाँ अर्जेंट लाने को कहा है। नमस्ते।
पता नहीं कौन है, क्या है,
अनजान जरूर है माँ, मगर उसने खुद अपनी साइकिल हमारे यहाँ रखकर हमसे मदद के 500 रुपए लिए हैं। छोड़ो, शाम तक दे ही जाएगा। टाइम क्या हो गया है?
अरे बाप रे, मेरे तो कॉलेज का टाइम हो गया है।
तो जल्दी कर ले, ये आदमी भी कितना टाइम खा गया है। तेरे पापा से अब तू ही निपटना।
ठीक है मम्मी। मम्मी मम्मी, वो आदमी अपनी साइकिल ले गया।
आ गई तू? अरे वो साइकिल क्या ले गया, तूने तो हमें मुसीबत में ही फंसा दिया है।
क्या हुआ?
तेरे जाने के 2 घंटे बाद ही एक पुलिस वाला उसे लेकर आया था और साइकिल जब्त करके ले गया। चोरी की साइकिल थी वो।
ओ मम्मी।
और वो आदमी चोर था, चोर, साइकिल चोर। वो चोर यहाँ से जाने के बाद किसी और की साइकिल चोरी करते भी पकड़ा गया था। थाने में जब उसकी पिटाई हुई तो उसने एक और साइकिल चोरी करके अपने यहाँ रखने की बात भी कबूल कर ली।
फिर
मैंने उस पुलिस वाले को सारी बात बताई तो उसने तेरे पापा को थाने आकर TI से अपने 500 रुपए ले जाने को कहा और बयान देने की बात भी की।
तो पापा कहाँ है? अभी ऑफिस से नहीं आए क्या?
ऑफिस से तो अपने टाइम पर ही आ गए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो आते ही थाने जाना पड़ा उन्हें।
तो अब तक तो उन्हें गए हुए बहुत देर हो गई।
हाँ
तो चलो फिर हम भी उन्हें थाने पर देखने चलते हैं।
तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है।
आ गए आप? शुक्र है भगवान का।
देखा नीलम तुमने, आज मैं इस लड़की की वजह से मुश्किल में फंसते फंसते बचा हूँ।
क्या कह रहे थे पुलिस वाले आपसे?
कहेंगे क्या, उन्हें तो पैसे खाने होते हैं, वे तो मुझ पर चोरी का माल खरीदने का इल्जाम भी लगा देते। वो तो अपने 500 रुपए में से 100 रुपए उनको देकर मैंने अपना पीछा छुड़ाया है।
कोई बात नहीं, पुलिस से पीछा तो छूटा।
सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी।
देखो बेटी, मैं तुम्हें किसी की मदद करने के लिए मना नहीं करता, लेकिन मदद करो तो देखभाल के। तुम लोग पहले अस्पताल में सब कुछ पता कर लेते फिर उसकी मदद करते, तो ये बात तो नहीं होती।
जी पापा, आगे से ध्यान रखूंगी।
हर कोई हर किसी का विश्वास पात्र नहीं हो सकता, और अनजान तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब तक अच्छी तरह से जांच परख ना लो तब तक किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, वरना धोखा खाना पड़ सकता।
समझी साक्षी बेटी, किसी की मदद जरूर करो मगर संभल कर।
विश्वास पात्र। अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अपर्णा सिंह, कनिका मदान, तरुण अग्रवाल और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।